मक्काबियों के ग्रंथों का परिचय। एज्रा और नहेम्या का समय 450 ईस्वी पूर्व है। उनके बाद इब्रानी बाइबल में सम्मिलित ग्रंथों में यहूदियों का तत्कालीन इतिहास नहीं मिलता। अन्य स्रोतों से हमें इस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। बाबुल के निर्वासन काल में यहूदियों को उत्पीड़ित नहीं किया गया था और उन्हें सुविधापूर्वक जीवन यापन की स्वतंत्रता थी। यहां तक कि उनमें कई व्यक्ति उच्च राजकीय पदों पर भी पहुंच गए थे। यही कारण है कि फारसी राजाओं द्वारा विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलने पर भी बहुत से यहूदी स्वदेश लौटने की अपेक्षा बाबुल में रहना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने अपने नैतिक और धार्मिक रीति रिवाजों तथा विधि निषेधों की रक्षा करते हुए अपने को विदेश की परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। अपने नबियों की शिक्षाओं के प्रभाव स्वरूप यहूदी बाबुल के निर्वासन में भी मूर्ति पूजा से विरत रहे तथा अपने धर्म में उनकी आस्था बनी रही। वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त संहिता का, जैसे खतना और विश्राम दिवस आदि संबंधी विधि निषेधों का पालन निष्ठापूर्वक करते रहे। वे विश्राम दिवस पर सभागृहों में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से धर्म ग्रंथ का पाठ और प्रार्थना करते थे। न केवल बाबुल बल्कि सीरिया, एशिया माइनर, यूनान, इटली, मिस्र आदि अन्य देशों के बड़े नगरों में भी प्रवासी यहूदियों की बस्तियां बस गई थीं, जहां वे सुविधापूर्वक जीवन बिताते हुए अपने धर्म कर्म करते थे। मसीह के जन्म के समय फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या लगभग 10 लाख थी, जबकि समस्त रोमन साम्राज्य में उनकी संख्या 70 लाख थी। सिकंदर महान के अल्पकालिक आकस्मिक उत्थान के कारण सारे पूर्वी साम्राज्य नष्ट हो गए और वहां उसका साम्राज्य स्थापित हुआ। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद 323 ईस्वी पूर्व उसका विशाल साम्राज्य, जो मकेदुनिया से भारतवर्ष तक फैला हुआ था, उसके उत्तराधिकारियों में बंट गया। इस संदर्भ में यहूदियों का देश सिकंदर के उस उत्तराधिकारी के हिस्से में आया जिसको मिस्र आदि देश मिले थे। यहूदिया प्रांत के निवासियों को 197 ईस्वी पूर्व तक उन्हीं शासकों के अधीन रहना पड़ा। इस अवधि में यहूदियों को अपने धर्म की स्वतंत्रता थी और उनका प्रधान याजक राजा के प्रतिनिधि के रूप में उनका शासक था। उस समय मिस्री साम्राज्य की राजधानी सिकंदरिया यहूदी प्रवासियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। वहां लाखों यहूदी निवास करते थे। सिकंदरिया में रहने वाले इन यहूदियों ने यूनानी भाषा तथा यूनानी संस्कृति को भी अपनाया। इसी काल में इन यूनानी भाषा भाषी यहूदियों की सुविधा के लिए इब्रानी में लिखे गए धर्मग्रंथ का यूनानी अनुवाद किया गया, जो सप्तती अनुवाद के नाम से जाना जाता है। यूनानी में प्रस्तुत इस अनुवाद से यूनानी भाषी गैर यहूदियों के बीच भी यहूदी धर्म संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इसी युग में यूनानी भाषा तथा संस्कृति का यहूदिया में रहने वाले यहूदियों पर भी प्रभाव पड़ा। इससे उनके दो संप्रदाय, समन्वयवादी तथा असमन्वयवादी, विकसित हुए। पहले का नाम सदूकी था और दूसरे का नाम हसीदी, जो बाद में फरीसी कहा जाने लगा। मक्काबियों का पहला ग्रंथ। 197 ईस्वी पूर्व में सीरिया के राजा अंतियोख महान ने मिस्र के राजा को पराजित कर दिया। इससे यहूदियों का देश सीरियाई साम्राज्य के अधीन हो गया। आरंभ में यहूदियों को इस नए शासक ने भी पहले की तरह धार्मिक स्वतंत्रता दी, लेकिन अंतियोख चतुर्थ, जिसे एपिफानेस भी कहते हैं, के शासनकाल 175 से 168 ईस्वी पूर्व में यहूदियों पर घोर धार्मिक अत्याचार हुए। उनका वर्णन मक्काबियों के पहले ग्रंथ के आरंभ में आया है। ये राजा अपने पूरे साम्राज्य में धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकरूपता स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने यहूदियों को इसके लिए विवश किया कि वे अपना धर्म और अपनी संस्कृति छोड़कर यूनानियों का धर्म और उनकी संस्कृति अपनाएं। यहूदियों में बहुत से लोग इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने धर्म पर दृढ़ रहने के लिए कटिबद्ध थे। इन अल्पसंख्यक यहूदियों का नेतृत्व याजक मत्तथ्या ने किया। वो मोदीन के निवासी और हसमोन नामक एक यहूदी के वंशज थे, इसलिए बाद में मत्तथ्या के पुत्र के राजवंश का नाम हसमोनी पड़ा। मत्तथ्या ने अपने 5 पुत्रों तथा अन्य धर्मनिष्ठ यहूदियों को एकत्रित किया, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा के विरोध के लिए तत्पर हो गए। युद्ध कला में दक्ष होने के कारण मत्तथ्या की मृत्यु के बाद उनके तृतीय पुत्र यूदाह को, जिन्हें मक्काबी हथौड़ेबाज भी कहते हैं, इन धर्मनिष्ठ यहूदियों के नेतृत्व का अवसर मिला। वो अनेक युद्धों में विजयी होने के बाद यहूदियों को मुक्त करने में सफल हो गए। यूदाह की मृत्यु के बाद उनके भाई योनातान और बाद में सिमोन यहूदियों के प्रधान याजक तथा शासक बने। इन्हीं सिमोन से वो हसमोनी राजवंश आरंभ हुआ, जो रोमियों के आगमन तक यहूदिया प्रांत पर शासन करता रहा। मक्काबियों के पहले ग्रंथ में नेता सिमोन की मृत्यु तक का वर्णन उपलब्ध होता है। यहूदिया के निवासियों की ये स्वाधीनता दीर्घजीवी नहीं हो सकी। स्वाधीनता के 80 वर्ष बाद 63 ईस्वी पूर्व में रोमन सेनापति पोम्पेय ने यरूशलेम को अधिकार में कर यहूदिया प्रांत को रोमन राज्य में मिला दिया। मक्काबियों के पहले ग्रंथ का मूल पाठ इब्रानी में था, लेकिन अब वो केवल यूनानी अनुवाद में उपलब्ध है। इस ग्रंथ की रचना 100 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। ग्रंथ के लेखक ने सर्वत्र ईश्वर की जगह स्वर्ग लिखा है, क्योंकि उस समय यहूदियों में ईश्वर के अशुद्ध नामोच्चारण के भय के कारण उसके लिए किसी अन्य संबोधन के उपयोग की प्रथा प्रचलित हो गई थी। छोटे छोटे सैनिक दलों की छुटपुट लड़ाइयों के वर्णन के कारण ये ग्रंथ पाठक को कुछ शुष्क लगता है। इसके बावजूद लेखक यहूदियों की धर्मनिष्ठा का आदर्श उपस्थित करने के लक्ष्य में सफल हुआ है। वो ये दिखलाता है कि धर्मनिष्ठ यहूदियों के घोर संघर्ष के फलस्वरूप अंत में एक धार्मिक राजवंश का उदय होता है।